नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् जेणिह कसाय पाहुड मणेयणयमुज्ज्वलम् अनन्तथम् गाहाहि विवरियं तं गुणहर भडारयं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। यह जो द्वितीय पुस्तक, द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें अभी हम उत्तर प्रकृति विभक्ति की चर्चा करते हैं और उसमें स्वामित्व अनुयोग चल रहा है। पृष्ठ संख्या 96 या 115 जो पॉइंट लिखा है वहां से पढ़ेंगे अभी हम। ये मार्गणाओं में बात चल रही है, कितने प्रकृतियों की विभक्ति है और नहीं है, और कितने का नियम से सत्व है, उसकी बात अलग अलग मार्गणाओं में बता रहे हैं। अब यहाँ क्रोध कषाय वाले जीव की बात चल रही है। कल हमने स्त्री वेदियों में देखा था, अपगत वेदियों में देखा था। अब यहाँ क्रोध कषाय वाले जीव के पुरुष वेदी जीव के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता जब कहते हैं तो जो डिफरेंस है वो बताते हैं दोनों में। इतनी विशेषता है कि इसके पुरुष वेद की अविभक्ति भी है। पुरुष वेदी की जब हमने बात की थी तो जब पुरुष वेदी कहते हैं तो वहां तो पुरुष वेदी की यानी पुरुष वेद की विभक्ति तो है, और अन्य की स्त्री वेद तक के विभक्ति नहीं भी है और है भी, ऐसा हो सकता है। तो पुरुष वेदी के लिए है, पुरुष वेद भी है और चार संज्वलन है, ऐसा कहेंगे। और क्रोध कषाय वाले के लिए अगर कहना है तो पुरुष वेद तक की विभक्ति है भी और नहीं भी, ऐसा कहेंगे। परंतु जो क्रोध कषाय का उदय है नवे गुण स्थान में अपगत वेद होने के बाद, तो उसके तो चारों कषाय है, चारों की सत्ता है। परंतु पुरुष वेद सहित अन्य की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इतनी विशेषता है कि इसके पुरुष वेद की अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मान कषाय वाले जीव के जानना चाहिए। मान कषाय वाले जीव में क्या कहेंगे, क्रोध की विभक्ति भी है और अविभक्ति भी है, क्योंकि उसने क्रोध का क्षय कर दिया है। इतनी विशेषता है कि इसके क्रोध कषाय की अविभक्ति भी है। भी लगाए ना, यानी विभक्ति भी हो सकती है और क्षय करने के बाद अविभक्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार माया कषाय वाले जीव के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके मान कषाय की अविभक्ति भी है। इसी प्रकार लोभ कषाय वाले जीव के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इसके माया कषाय की अविभक्ति भी है, यानी अभी सभी का नाश कर दिया, अकेला एक लोभ बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। कषाय रहित जीवों में 24 प्रकृतियों की विभक्ति किसके है, जब कषाय रहित कहते हैं तो उदय की अपेक्षा समझना है। विभक्ति रहित नहीं कहा, कषाय रहित कहा। तो 11वें गुणस्थान में तो 24 की सत्ता है। तो किसके है, तो कहते किसी भी उपशामक जीव के। वो क दिख रहा है, के करना उसको, हाँ अस्पष्ट है वो, छापा है उन्होंने। अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना शेष 24 प्रकृतियों की विभक्ति है। और 24 प्रकृतियों की अविभक्ति किसके है, अकषायी जीवों में अविभक्ति किसके है, तो किसी भी एक शपक जीव के 24 प्रकृतियों की अविभक्ति है। अविभक्ति यानी सत्ता नहीं है। कब होगा? 12वें गुणस्थान में वो 24 की सत्ता निकल गई ना, सबकी 28 की 28 निकल गई, परंतु वो 24 की सत्ता वाला लिया है और ये बिना सत्ता वाला। इसी प्रकार यथाख्यात संयम जीव के कहना चाहिए। यथाख्यात संयम भी 11वें से है, तो यथाख्यात संयमी वाले को 24 की सत्ता भी है और नहीं भी है, ऐसे हम कहेंगे। वहां विशेषार्थ जो अभी पढ़ा उसी को दोबारा समझा रहे हैं। पुरुषवेदी जीव की अपेक्षा क्रोधादि कषाय वाले जीवों के जो विशेषता होती है वह ऊपर बतलाई ही है। कषाय रहित अवस्था उपशम श्रेणी के 11वें गुणस्थान में और क्षपक श्रेणी के 12वें गुणस्थान से होती है। से लगाए ना, यानी इससे ऊपर भी है। 11वें गुणस्थान में 24 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, इसलिए कषाय रहित उपशामक के 24 प्रकृतियों का सत्व कहा है। क्या 24 की सत्ता वाले ही होंगे 11 में, के और कितनी सत्ता वाले हो सकते हैं? 28 की सत्ता वाले इनको मंजूर नहीं है। हाँ, यहाँ हम यहाँ की बात करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ की बात हम करेंगे। ये कोई जीव 24 की सत्ता वाला है, और भी कोई वहाँ क्षायिक समय दृष्टि होगा तो 21 की सत्ता वाला है। तो ये दो विकल्प हो सकते हैं। इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दर्शन मोनी की 3 प्रकृतियों का सत्व नहीं होता। उसने अनंतानुमंदी और दर्शन मोनी का क्षय कर लिया है। 21 की सत्ता सहित चढ़ता है और सबका उपशम करते करते 11वें में पहुंचता है। उपशम श्रेणी में कोई भी क्षय का कार्य नहीं है, सभी प्रकृति सत्ता में पड़ी है। तथा 12वें गुणस्थान में मोहनीय की एक भी प्रकृति का सत्व नहीं है, पूरा ही समूल नाश कर दी ना 10वें के अंत में ही। अतः कषाय रहित क्षपक जीव के सभी प्रकृतियों का असत्व कहा है। कषाय रहित क्षपक कहा, अकेला क्षपक नहीं कहा है, क्योंकि क्षपक तो वो 8वें से क्षपक कहलाएगा। तो कषाय रहित क्षपक कहने का मतलब वो 12वें से आगे उसको कषाय रहित क्षपक कहेंगे। यथाख्यात संयत भी 11वें गुणस्थान से होता है। संयम चाहिए ना, कि संयत बताना है उनको। अतः इसका कथन भी कषाय रहित जीवों के समान ही है। वो जीव के लिए संयत लगा दिया उन्होंने। संयत ही बताना है, यानी वो जीव संयमी जीव को संयत कहते, उस अपेक्षा से संयत कह दिया है। अब मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी कॉमा लगाना, और अवधि ज्ञानी जीवों में ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही ना, नहीं तो वो मत्य ज्ञानी लिखते। तो मति श्रुत अवधि ज्ञानी जीवों में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व थ्या करना, उसको थ्य हो गया, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति किसके है, यानी उसकी सत्ता किसके पाई जाती है, यानी ये सम्यक दृष्टि जीव है मतिश्रुत अवधि ज्ञानी और इनकी सत्ता वाला जीव है, तो किसके होगी? तो जिसने क्षय नहीं किया है उसके होगी, जो क्षायिक नहीं है। जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मति ज्ञानी आदि जीव के है। अविभक्ति किसके है? अभी इन 7 की अविभक्ति किसके होगी? क्षायिक समय दृष्टि के। जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मति ज्ञानी आदि जीव के है। तथा इनके शेष प्रकृतियों का कथन ओघ के समान है। शेष यानी जो रिमेनिंग जो 21 प्रकृतियां हैं उसका कथन ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि शेष 21 प्रकृतियों की विभक्ति किसी भी मति ज्ञानी आदि जीव के है, यानी मतिश्रुत अवधि ज्ञानियों में 21 की सत्ता वाला जीव है। इसी प्रकार मनपर्य ज्ञानी, यानी मनपर्य ज्ञानियों में, पहले जैसे हमने मतिश्रुत अवधि ज्ञानियों में इन सात के विभक्ति वाले और बिना विभक्ति वाले देखें। वैसे ही मनपरे ज्ञानियों में इनकी सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, होगा ना? हाँ, जो वेदक समय दृष्टि है तो उनके तो ये सात की सत्ता है, और जो क्षायिक है उनके इन सात की सत्ता नहीं है, वो अविभक्ति वाले कहलाएंगे। संयत में भी ऐसा ही लगाना, संयत में इनकी सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले, बिना सत्ता वालों में क्षायिक लेना। सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवों के कथन करना चाहिए। ये ऊपर अवधि ज्ञानी के साथ अवधि दर्शनी क्यों नहीं लगाया, ये अलग से बताने का क्या प्रयोजन था? हाँ लक्ष्मी बहन, देवेंद्र भाई, यहाँ मार्गणाओं में बात चल रही है। पहले ज्ञान मार्गणा, ज्ञान के बाद किसका नंबर है? इमीडिएट दर्शन नहीं है, ये बीच में पढ़ो ना, यहाँ किसका है? ज्ञान, संयम, फिर दर्शन, ऐसा है ना? तो इस क्रम से उसको लिया है। ये मैंने बोला ना, इसमें तो कॉमन सेंस ही लगता है, ऐसा कोई इसी क्रम से सभी मार्गणाएं बता रहे हैं, तो फिर सम्यक तो मार्गणा की बात, इसलिए सम्यक दृष्टि लिया बाद में। कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपसना स्थापना संयत जीव के लोभ कषाय की अविभक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वो तो है, अविभक्ति तो बारहवें में हो जाएगी। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में मिथ्यात्व, सम्यत्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, संज्वलन लोभ के बिना 11 कषाय और 9 कषाय की विभक्ति किसके है? अभी उसके तो सूक्ष्म लोभ है वहां पर, तो उसके छोड़कर अन्य की बात चल रही है, तो उसमें अन्य की विभक्ति और अविभक्ति लगाएंगे। तो सूक्ष्म सांप्राय में विभक्ति वाले कौन से हो गए? उपशामक। और सूक्ष्म सांप्राय में इनके अविभक्ति वाले क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक, इसलिए लोभ के अलावा अन्य 11 कषाय लिए, यानी अन्य 20 प्रकृतियों की बात की, क्योंकि लोभ तो दोनों जगह है, लोभ की विभक्ति तो है, लोभ को छोड़कर अन्य की बात चल रही है। देखो कि विभक्ति किसके है, किसी भी उपशामक के है, और अविभक्ति किसके है, किसी भी क्षपक के है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शन मोहनीय की अविभक्ति उपशामक के भी है, भी लगाया। क्यों? क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि श्रेणी चढ़ेगा उपशम श्रेणी, तो वहां इनके अलावा तीन दर्शन मोह का भी वहां सत्ता नहीं है, अविभक्ति है। अनंतानुबंधी का तो भी संयोजन किया है। हाँ, ये तो उसकी अपेक्षा तो दोनों जगह समान 24 का हिसाब लगाया था, परंतु उनके अलावा जो है उसकी बात यहाँ चल रही है। लोभ की विभक्ति किसके है? किसी एक उपशामक या क्षपक सूक्ष्म सांप्राय संयोग जीव के लोभ की विभक्ति है। विशेषार्थ, ये समझ में आया? विभक्ति यानी सत्ता की बात चल रही है, तो सूक्ष्म सांप्राय उपशामक हो या क्षपक हो, लोभ की तो सत्ता है उसके। विशेषार्थ, क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीव के एक सूक्ष्म लोभ का ही सत्व है, शेष सब का असत्व है, तथा उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना 24 प्रकृतियों का, क्षायिक समय दृष्टि उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के अनंतानुबंधी 4 और तीन दर्शन होने के बिना 21 प्रकृतियों का सत्व होता है। अभव्य जीवों में, ये भव्य मार्गणा की अपेक्षा भी अभव्य जीवों की बात यहाँ उठाई। अभव्य जीवों में 26 प्रकृतियों की विभक्ति किसके है? न सभी के तो किसी भी अभव्य के है। आगे क्षायिक समय दृष्टियों में प्रश्न है अभव्य के 28 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, सवाल ही नहीं है ना 28 की सत्ता होने का। तो क्षायिक समय दृष्टियों में 12 कषाय और 9 9 कषाय की विभक्ति किसके है? 12 9 और 21 है ना। तो जब तक वो क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता है, नौवे गुण स्थान में क्षय करना प्रारंभ नहीं करता है, तब तक तो विभक्ति वाले ही हो गए सारे। जिसने इन 21 प्रकृतियों का क्षय नहीं किया है, ऐसे किसी भी क्षायिक समय दृष्टि के 12 कषाय और 9 9 कषाय की विभक्ति है। और अविभक्ति किसके है? जिसने इनका क्षय कर दिया है उसके इनकी अविभक्ति है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि ने दृष्टियों में ऐसे कौन से जीव है जिन्होंने इनका क्षय कर दिया है? कौन सा यहाँ ये सबकी सब 12वां 13वां 14वां सिद्ध भगवान ऐसा समझना है यहाँ पर, इन सभी का जिन्होंने क्षय कर दिया है ऐसा जीव लिया ना। वेदक सम्यक दृष्टियों में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति किसके है? वेदक सम्यक दृष्टि है और उन दो की सत्ता है, तो किसी भी वेदक सम्यक दृष्टि के है। परंतु वेदक होते हुए भी इन दो की सत्ता नहीं है, ऐसा कौन सा जीव होगा? जय बेन हाँ हाँ, आप क्या कहते हैं? आपको उद्वेलना कहना है? देखो सम्यक दृष्टि के कभी उद्वेलना नहीं होती। हाँ, वो तो मिथ्यात्व में जाने का ही बात होता है। तो सम्यक दृष्टि होते हुए मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? हाँ, वेदकपन जिसकी सत्ता में नहीं है ऐसा कौन सा वेदक है, उसको क्या कहेंगे? कृतकृत्य वेदक, जो जिसने क्षायिक का प्रारंभ कर दिया है, अनंतानुबंधी के विसंयोजन के बाद मिथ्यात्व का क्षय और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर चुका है। अब उसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है, परंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, तो उसकी उसके अविभक्ति है। हम पढ़ेंगे यहाँ तीसरी लाइन के अंत में, जिसने दर्शन मोह की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है उसके अविभक्ति है। अब अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति किसके है? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, ऐसे किसी भी वेदक सम्यक दृष्टि जीव के। दे वेदक सम्यक दृष्टियों में बात चल रही है, इसलिए वेदक सम्यक दृष्टियों में ही जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की ऐसा जीव लिया। हाँ देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, वेदक सम्यक दृष्टि, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? पहले में वेदक और क्षायोपशमिक ये दो अलग अलग नाम है, बात तो एक ही है। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा था अंत में कि क्षायोपशमिक, क्षयोपशम ये जो अवस्था है, क्षयोपशम अवस्था की परिभाषा याद है? जहाँ सर्वघाती वर्तमानकालीन, सर्वघाती वहां स्पर्धकों की बात की, परंतु सम्यक्त्व के बारे में हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, जब उदयाभावी क्षय कहते हैं तो क्षय तो हो रहा है परंतु उस रूप से नहीं हो रहा है, अनुभाग उस रूप से नहीं है। मिथ्यात्व रूप से उदय में आ जावे तो जीव का मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा। ये कौन सा गुणस्थान चल रहा है उसका? चौथा पांचवा जो कोई है, वेदक सम्यक दृष्टि है, तो उसका मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी उसके परमाणु तो खिर रहे हैं। तो किस रूप खिरते हैं? तो देशघाती होकर, यानी सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आते हैं, उसी को कहते हैं उदयाभावी क्षय। और भविष्यकालीन जो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के परमाणु है वो वहीं पर पड़े हैं, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, उदय में नहीं आना। ये दूसरे जो है वो अन्य रूप से उदय में आ रहे थे, अब ये भविष्यकालीन मिथ्यात्व रूप से ही पड़े रहे हैं, भविष्य काल में पड़े हैं, तो उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। उदय किसका चल रहा है, किस रूप से, सम्यक मिथ्यात्व का, जिसको हम देशघाती कहेंगे, तो देशघाती का उदय हो रहा है, सम्यक प्रकृति, सॉरी मैंने सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है, वो देशघाती प्रकृति है। तो तीन अवस्था हो गई, क्षय और उपशम किसका चल रहा है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो सर्वघाती है, तो उस अपेक्षा उसको क्षयोपशम कहेंगे, क्षयोपशम सम्यक्त्व। अब उदय किसका हो रहा है, देशघाती जो सम्यक प्रकृति है, तो जिसका उदय होता है उसका वेदक कहने में आता है, सम्यक प्रकृति का उदय है ना, तो हम कहते हैं सम्यक प्रकृति का वेदक है। जैसे क्रोध का जिसको उदय है उसको क्या कहते हैं, क्रोध वेदक, ऐसे ये सम्यक प्रकृति का वेदक है, इसलिए उसी को वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं और उसी को क्षोभशम सम्यक दृष्टि कहते हैं। दोनों एक ही बात है, वेदक कहो या क्षोभशम सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है। अब कृतकृत्य वेदक किसको कहना, कृतकृत्य वेदक, वेदक कहा है वहां सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, परंतु कृतकृत्य यानी करने जैसा कार्य उसने कर लिया है, क्या किया है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके नाश कर दिया है और मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय किया है। क्षय करने का प्रोसेस क्या है, वो सारे के सारे परमाणु सम्यक प्रकृति रूप टर्न हो गए हैं, अब वो अंतर्मूर्त में उदय में आकर खिर जाएंगे, उसका प्रोसेस अलग है, परंतु अभी उसके वेदक तो कहेंगे, क्यों, क्योंकि अभी सम्यक प्रकृति का उदय, अभी उसको कृतकृत्य क्षोभशम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दो प्रकृति है ही नहीं ना, अभी दो प्रकृति सभी की सभी सम्यक प्रकृति रूप हो गई है और उसका उदय चल रहा है, इसलिए उसको वेदक कहेंगे, कृतकृत्य वेदक।
कर्मों की अपेक्षा वहां क्षोभशम हो रहा है, यानी क्षय जो हमने उदयाभाविक क्षय देखा और उपशम, इसलिए उसी सम्यक्त्व को क्षोभशम सम्यक्त्व कहेंगे, और उसी को जब हम वेदन किसका हो रहा है तो सम्यक प्रकृति का हो रहा है, तो उसी सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व कहेंगे। अर्थ दोनों का एक ही है, जैसे हम आधा ग्लास भरा हुआ है तो खाली कोई कहेगा, कोई भरा हुआ कहेगा, अपेक्षा जुदी जुदी है। और कृतकृत्य वेदक की तो बात आपने समझ लिया अभी,
यानी जो कृतकृत्य वेदक है उसके अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सत्ता ही नहीं है, विभक्ति ही नहीं है उसकी, अविभक्ति है। अब जो सामान्य से जो रेगुलर जो वेदक सम्यक दृष्टि है उसके अनंतानुबंधी भी है और ये तीन प्रकृतियां भी है। अब उनमें ऐसा भी आप भी जीव पूछेंगे कि अनंतानुबंधी की सत्ता है कि नहीं है वेदक को, तो रेगुलर हम देखेंगे होती है, परंतु उसकी विशुद्धि बढ़ती है, करण परिणाम होते तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाता है।
विसंयोजन होना यानी क्या, ये भी
तो विसंयोजन होना यानी वो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और नौ नौ कषाय रूप परिवर्तित होते हैं, संक्रमित होते हैं पूरे के पूरे, जितने सत्ता में है वो सारे के सारे, उसको कहते हैं विसंयोजन होना। अब ऐसे जीव को अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता जब तक वो सम्यक तो चला रहा है। अब ऐसा जीव मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में चला जाए, मिथ्यात्व का उदय ने कर्म के कारण जाता ये बात नहीं है, उसके परिणाम ऐसे बिगड़ गए कि मिथ्यात्व रूप हो गए, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद वहां मिथ्यात्व के कारण उसके अनंतानुबंधी का बंद हो जाता है, नया बंद होगा तो उसकी सत्ता में चालू हो गए अनंतानुबंधी, फिर उसके उदय भी शुरू हो जाएगा आवली के बाद।
जब हम द्रव्यान युग की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, वहां कोई क्षयक्षम सम्यक भी कहेगा, कोई वेदक सम्यक भी कहेगा, तो उसमें भेदभाव नहीं करते, लेकिन यह जो सूक्ष्मता है वह कर्णान योग में ही आपको बताई जाएगी। वहां कृतकृत्य वेदक आएगा शब्द, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका हम इस कर्णान योग के माध्यम से अर्थ सही रूप से ख्याल में लेते हैं।
देखो अभी हम पांचवी लाइन में आए, अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति किसके है, उसकी सत्ता किसके है, जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, ऐसे किसी भी वेदक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति है। आप पूछेंगे उपशम की क्यों बात नहीं की, क्योंकि अपना क्राइटेरिया वेदक का चल रहा है, उपशम की बात आएगी तो उपशम में भी बताएंगे। तो वेदक होते हुए अविभक्ति किसके हैं? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है उसके अविभक्ति है। शेष प्रकृतियों की विभक्ति किसके हैं? किसी भी वेदक समय दृष्टि जीव के हैं। अब उपशम समय दृष्टि की बात पूछ रहे हैं। उपशम समय दृष्टियों में अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति किसके हैं? सत्ता, तो कहते जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है उस उपशम समय दृष्टि के विभक्ति है। और अविभक्ति किसके हैं? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर दी है उस उपशम समय दृष्टि के अविभक्ति है। हमने देखा था द्वितीय उपशम करता है तो पहले में पहले विसंयोजना करने के बाद वो द्वितीय उपशम कर देता है, तो वहां उसकी अविभक्ति है। जैसे वेदक में पूछा था मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का विभक्ति अविभक्ति किसके है, ऐसे क्या हम उपशम सम्यक में कह सकते हैं? कोई ऐसा उपशम समय दृष्टि होगा कि जिसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की अविभक्ति होगी? हाँ, अविभक्ति उपशम सम्यक होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वेदक में हो सकता है क्योंकि वो कृतकृत्य वेदक है अभी, इसलिए वहां हो सकता है। परंतु उपशम ही उसने मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का कर दिया ना, वहां सबका उपशम है वहां पर। हाँ, कहते शेष प्रकृतियों की विभक्ति किसके है? उपशम सम्यक दृष्टियों में बात चल रही है। पहले पूछा अनंतानुबंधी की विभक्ति किसके है कि जिसने विसंयोजना नहीं की है, और अविभक्ति किसके है जिसने विसंयोजना कर दी है। शेष प्रकृतियों की विभक्ति किसके है? किसी भी उपशम समय दृष्टि के शेष प्रकृतियों की विभक्ति है, यानी अनंतानुबंधी के अलावा अन्य किसी की भी अविभक्ति उसके नहीं हो सकती, विभक्ति ही है। यानी 24 की सत्ता वाला होगा या 28 की, उपशम समय दृष्टि जीव, उपशम की बात है, ग्यारहवें की बात नहीं चल रही, उपशम समय दृष्टि जीव की बात चल रही। क्या लाए ये बात? सासाधन समय दृष्टियों में सभी प्रकृतियों की विभक्ति किसके हैं? किसी भी सासाधन समय दृष्टि जीव के सभी प्रकृतियों की विभक्ति है। सासाधन वाले की कितनी सत्ता होनी चाहिए? उससे कम कहीं हो सकता है? कहीं नहीं, उसके सभी की सभी प्रकृतियों की सत्ता है। क्योंकि हम देखते हैं अनंतानुबंधी के उदय से हुआ है और औपशमिक प्रथम औपशम समय के काल में से वो आया है, तो नियम से उसके सभी 28 की सत्ता है। किसी भी सासाधन समय दृष्टि जीव के सभी प्रकृतियों की विभक्ति है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति और अविभक्ति किसके हैं? सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान में ऐसा हो सकता है कि पहले ऊपर के गुणस्थान में उसने विसंयोजना की और बाद में तीसरे में आया, दूसरे में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अनंतानुबंधी के उदय में होने वाला गुणस्थान है, परंतु तीसरे में वो जीव आ सकता है। कल हमने इसकी बात की थी। तो सम्यक मिथ्या दृष्टियों में यानी तीसरे गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति और अविभक्ति किसके हैं? किसी भी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के हैं। किसी प्रकृतियों की विभक्ति? किसी नहीं चाहिए, यहाँ कुछ शेष चाहिए। शेषाणम पैडियम विहत्ति कस्स, शेष कर देना वहां। अभी हमने पढ़ रहे नीचे से दूसरी लाइन, वो विशेषार्थ के ऊपर मिल गया, वहां क्या लिखा है? किसी प्रकृतियों की विभक्ति वो नहीं, शेष प्रकृतियों की, यानी अनंतानुबंधी को छोड़कर अन्य जो 24 है, किसकी किस संबंधी बात चल रही है? सम्यक मिथ्या दृष्टियों में अन्य 24 की सत्ता वाला कौन है जीव, ऐसा पूछा है। तो किसी भी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के शेष प्रकृतियों की विभक्ति है, यानी अनंतानुबंधी के बारे में ही ऑप्शनल होगा, उसकी सत्ता वाला भी हो सकता है, बिना सत्ता वाला भी हो सकता है, परंतु तीसरे गुणस्थान वाले के अन्य 24 तो हो गए ही हो गए, अनंतानुबंधी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ख्याल में आया भानु बेन? शायिक समय दृष्टि तीसरे में कैसे आएगा? तीसरे गुणस्थान की बात चल रही है, अनंतानुबंधी की विषय जो वेदक समय दृष्टि था, चौथे की बात करेंगे। उसने भी संयोजना कर दी, अब उसकी सत्ता में 24 प्रकृति है। अब वो जीव तीसरे में आया, क्योंकि सम्यक प्रकृति तो है ना, दर्शन मोनी तीनों पड़ी है अंदर। पहले सम्यक प्रकृति का उदय था जब तक वो वेदक था, अब तीसरे में आया तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने लगा। परंतु अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्व में ही कर चुका है वो, तो हो सकता है तीसरे में से वापस चौथे में भी जाए या पहले में भी चला जाए। पहले में जाएगा तो फिर अनंतानुबंधी का बंध करेगा, पर 24 की तो सत्ता होगी ही होगी। विशेषार्थ जो अभी हमने पढ़ा है उसी की बात दोहराएंगे। सभी अभव्यों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 26 प्रकृतियों का ही सत्व होता है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ये 26 के 26 होते हैं। क्षायिक समय दृष्टि के 3 दर्शन मोनी और 4 अनंतानुबंधी का सत्व नहीं होता, शेष 21 प्रकृतियों का सत्व होता भी है और नहीं भी होता। क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि तो 12वें 13वें में भी है, 14वें में है, सिद्धों में है, तो शेष 21 का सत्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वेदक समय दृष्टि के अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर 22 प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। क्योंकि वेदक में ये कौन सा लिया, जिसका वो सत्ता नहीं है और इनका है, तो ये कृतकृत्य वेदक लिया। अनंतानुबंधी भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं है। शेष 6 प्रकृतियों का सत्व होता भी और नहीं भी होता, होता भी है रेगुलर वेदक समय दृष्टि और नहीं भी होता कृतकृत्य वेदक। उपशम सम्यक दृष्टि जीवों के अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना शेष 24 प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। वो द्वितीय उपशम वाला विसंयोजना करने के बाद करता है, उसके तो नहीं होगा 4 का सत्व, परंतु 24 का तो उसके भी होता ही है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का सत्व होता भी और नहीं भी होता। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना 24 प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। अनंतानुबंधी 4 का सत्व होता भी है और नहीं भी होता। सासादन सम्यक दृष्टियों के 28 प्रकृतियों का ही सत्व होता है, सासादन वाले के सभी प्रकृतियां हैं। इस प्रकार स्वामित्व अनियोग द्वार समाप्त हुआ। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, अब एक जीव की अपेक्षा काल बताएंगे। हाँ अच्छा, आप गुणस्थानों में सत्ता देख रहे हैं। अच्छा हाँ, देखो पहले गुणस्थान में कितनी की सत्ता हो सकती है, अभी हम ऐसा देखेंगे, यहाँ का विषय नहीं है। अभी उन्होंने बात उठाई है, सत्ता की बात है ना, तो सत्ता वाला कौन सा अनादि मिथ्या दृष्टि लेते हैं, उसकी कितनी होगी सत्ता मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में? 26 की सत्ता वाला होगा, 28 के होगा कि नहीं होगा? सादी मिथ्या दृष्टि, हाँ सादी में 28 की होगा। और कौन सा विकल्प हो सकता है? 27 वाला कौन होगा? हाँ, उद्वेलना दोनों की एक साथ करते करते सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले समाप्त हो जाती है, और पहले थोड़े ही से काल तक सम्यक मिथ्या तो बाकी रहे, तो उसके सत्ता में यानी ये 28 वाला भी लिया, 27 वाला भी होगा। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प है इसमें? विसर्जना करके भी लौटेगा तो भी लौटते ही उसी समय उसके अनंतानुबंधी का बंधन है, सत्ता में तो शुरू हो जाएगा, उदय की बात नहीं चल रही है। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का उदय है तो उसी समय उसका बंध भी है अनंतानुबंधिक। सत्ता ही ऐसा है, उद्वेलना दोनों की चल रही सादी मिथ्या दृष्टि के, तो उद्वेलना होते होते सम्यक प्रकृति पूर्ण रूप से उद्वेलित हो गई। उद्वेलना ने उल्टा संक्रमण, जब हम कहते हैं प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होता है, तो मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं। उसको हम पहले गुण संक्रमण और विद्यात संक्रमण कहते हैं, वो सम्यक प्रकृति रूप हो गए। अभी मिथ्यात्व में गया वही जीव फिर से, तो ये उल्टा संक्रमण शुरू होता है, उसको उद्वेलना कहते हैं। हाँ, दोनों की उद्वेलना चल रही है, परंतु सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले फिनिश हो जाती, कंप्लीट हो जाती, और कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप से रहे हैं अभी, उस पोजीशन में उसके सत्ता इसकी सत्ता कहेंगे हम। ये तो मिथ्यात्व गुणस्थान की बात है। अब दूसरे गुणस्थान में कितने कितने विकल्प है, ऑप्शंस, अभी हमने पढ़ा ना 28 के ही है। पहले में समझ में आया 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, दूसरे में 28 की ही होगी। तीसरे गुणस्थान में अभी हमने देखा था ना, विसंयोजना वाला भी तीसरे में आ सकता है, और हाँ तो 28 और 24 रेगुलर, तो 28 और विसंयोजना करके जो आया है वो 24। अब चौथे गुणस्थान में कितने कितने की सत्ता हो सकती है, तो चौथा गुणस्थान पहले में पहले प्राप्त हुआ तो 28 तो होगा, 26 वाला होगा कि नहीं, कोई तो 28 वाला है। 28 वाला कौन हो सकता है, ऑप्शन एक के वेदक 28 की सत्ता वाला, हाँ प्रथम ऑप्शन, ऑप्शन भी हो सकता है, वेदक भी हो सकता है। अब ऐसे किसी जीव ने विसंयोजना की, 24 वाला हो गया, 23 वाला कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिसने क्षय का प्रोसेस शुरू कर दिया है तो मिथ्यात्व का क्षय हो गया, अभी सम्यक मिथ्यात्व का नहीं हुआ है, तो 23 का भी होगा। अब सम्यक मिथ्यात्व का भी कर दिया तो 22 का हो गया, और सम्यक प्रकृति का भी प्रोसेस पूरा हो गया, क्षय हो जाए ना, हमें चौथा गुणस्थान लेना है, तो 21 का हो जाएगा। तो इतने हो सकते उसके, तो इससे कम होगा कि नहीं होगा, चौथे में, चौथे में 21 से कम होगे कि नहीं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके आगे जो क्षय का कार्य है वो 90 में ही होगा, तो 90 तक यही पोजीशन रह सकती है कि नहीं। तो 90 तक, यानी वो 90 तक जो है वो पोजीशन उसके कृतकृत्य वाला तो उपशम श्रेणी में नहीं होगा, वो यानी चौथा पांचवा छठा सातवां तो यही पोजीशन होगी, 22-21 वाला वहां भी पाया जाएगा। आपका क्या प्रश्न है, 22 वाले को कृतकृत्य कहेंगे, बिल्कुल कृतकृत्य वेदक, आठवें नवमी में 21 का होगा या 24 का होगा, 24 का वो उपशम श्रेणी में और 21 का शपक श्रेणी में, आठवें में शुरू हुआ, नवे में जहां जहां उसका जो क्षय होगा, तो 21 के बाद आगे वाला कौन सी पोजीशन होगी, नवे में 8 का क्षय होगा, 13 होगा, फिर एक एक वेद चला जाएगा, नपुसक वेद, स्त्री वेद, फिर 13 में से 12, 12 में से 11, फिर 6-9-9 कषाय, सॉरी 6-9 कषाय, तो 5 हो जाएगा पुरुष वेद, फिर 4 रह जाएंगे क्रोध मान माया, और फिर एक लोभ जाएगा, इस तरह से उसके आगे की गुणस्थान, ये 90 में ये इतने विकल्प हो जाते हैं। क्षय का 8वें में कुछ नहीं होता, देखो या तो 24 की सत्ता वाला होगा या 21 की सत्ता वाला, शायिक समय दृष्टि है तो उसमें दो हो गए, ये शायद आएगी आगे बात आएंगे, ये तो हमने अभी अपने मन से बात बताया, आपका प्रश्न था इसलिए। हाँ ठीक है, अब कालानुगम की बात चलेगी, काल, कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से ओग की अपेक्षा मिथ्यात्व 12 कषाय और 9-9 कषाय की विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो कहते हैं अनादि अनंत और अनादि शांत काल है। किसको छोड़ा इसमें से, हाँ परंतु ऊपर की लिस्ट में किसको छोड़ा, देखो मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय, संज्वलन को छोड़ा, अच्छा अभी आप हाँ अनंतानुबंधी को छोड़ना कि संज्वलन को छोड़ना, 12 में किसको छोड़ना किसको क्यों? हाँ उसका विसंयोजन होता है ना, इसलिए वो शादी हो जाता है, या इसलिए यहाँ संज्वलन की बात नहीं है। संज्वलन का क्षय होता है तो कायम के लिए होता है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है तो फिर दोबारा संयोजन भी हो सकता है, इसलिए उसको तो शादी कहेंगे। और ये जो अनादि अनंत है और अनादि शांत है, दोनों में अनादि आया ना शब्द, तो ये अनादि अनंत किसकी अपेक्षा कहेंगे? अभव्यों की अपेक्षा, और अनादि शांत भव्य की अपेक्षा, दोनों में अनादि शब्द लगे हैं। अनंतानुबंधी में अनादि भी हो गया और शादी भी हो गए, क्या है? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? ये विभक्ति किसके होगी? जो एक बार सम्यक दृष्टि हुआ है उसी के होगी, तो उसका काल कितना है? तो जघन्य अंतर्मूर्त, ये अंतर्मूर्त कैसा होगा? देखो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ तो इनकी विभक्ति शुरू हो गई, तो कितने काल तक वो विभक्ति रहेगी? क्षोभशम जाएगा, वेदक सम्यक दृष्टि होगा तो भी उसकी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? नीचे आएगा मिथ्या तो भी सत्ता रहेगी असंख्यात वर्षों तक। हाँ तो ऐसा जीव लेना चाहिए, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त में वेदक हुआ और अंतर्मूर्त में उसने शायिक हो गया, ऐसा जीव लेंगे तो ही ये जघन्य काल अंतर्मूर्त सिद्ध होगा। किसकी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाले, अंतर्मूर्त तक ही उनकी सत्ता रही, यानी उत्पन्न हुए, क्योंकि हम देखते हैं मिथ्यात्व में गया तो भी पल्ले के असंख्यात्व भाग काल तक उद्वेलना होने के लिए उतना काल लगता है उसको, तो नष्ट कैसे हो सकती है? दूसरा मार्ग क्या है? तो क्षायिक होना चाहिए, तो ये जघन्य काल घटित होगा। हाँ उसका अंतर्मूर्त था कि नहीं हमको क्या पता, प्रथमा नियोग में जो कुछ हो जाएगा जघन्य काल अंतर्मूर्त ये तो कहने के लिए, वो सातवां बंद किया तभी तो मिथ्या दृष्टि था। हाँ हाँ बाद में औपशमी किया, फिर वेदक हुआ, फिर क्षायिक हुआ। सम्यक तो मान लेते हैं कि मुनि के सामने प्राप्त हुआ, तो क्षायिक के लिए तो महावीर भगवान के समोचरण में गए। पता नहीं ना हमको। जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल, अभी उत्कृष्ट काल कैसा है लेना है? देखो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का तो उत्कृष्ट क्षोभशम में भी रहेगा, और उत्कृष्ट मिथ्यात्व में आने के बाद जब तक उसकी उद्वेलना रहती तब तक भी रहेगा। अब यहाँ ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि वो वहाँ उत्कृष्ट काल है, मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में वो उद्वेलना होते होते थोड़ा समय बच गया, फिर वो वेदक हुआ या उपशम करके फिर उसने उपशम किया, फिर दोबारा वेदक होके बहुत काल बिताया, फिर मिथ्यात्व में आया, फिर उद्वेलना के लिए बहुत लंबे काल तक गया, उद्वेलना के पहले पहले फिर उपशम किया, इस तरह से अभी कहेंगे। देखो तो उत्कृष्ट काल कितना है? पल्ल्य के 3 असंख्यात वे भागों से अधिक, यानी पल्ल्य के असंख्यात वे भाग 3 बार लेना है, उससे अधिक 132 सागर है, वो भी बताएंगे, उसकी कैलकुलेशन आगे विशेषार्थ में कहेंगे। अब अनंतानुबंधी का बता रहे हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? विभक्ति वाले जिसके सत्ता है तो कहते हैं अनादि अनंत, किसके लिए? अभव्यों के लिए। अनादि शांत, विसंयोजना करते ही शांत हो गया ना वो, अनादि शांत, और सादी शांत, सादी यानी विभक्ति के लिए सादी कहा है, विभक्ति वाले सादी, सादी कब कहेंगे? संयोजना करने पर, विभक्ति के सादी करना है ना, यानी पहले विषय योजना के बाद नाश कर दिया था, अब उसकी विभक्ति कब होगी? जब उसने पहले में आकर नया बंध किया तब उसके शादी हो गई। तो शादी है यानी जब तक मिथ्यात्व में है तब तक तो सत्ता है, समय को प्राप्त करने पर भी सत्ता तो है, दोबारा जाके जब विसंयोजना करेगा तब वो अंत होगा। तो शादी और शांत, शादी कब हो गई? जब संयोजना की तब शादी हुई, अब जब दोबारा विसंयोजना करेगा तब अंत हो जाएगा, इसलिए उसको शादी शांत कहा। विभक्ति के लिए शादी शांत कहा है। कौन सा वाला विसंयोजना की है? हाँ वो डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ चौथे से डायरेक्ट पहले में जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि उसके मिथ्या तो समय मिथ्या तो दोनों में से किसी का भी उदय हो सकता है, परिणाम कैसे भी हो सकते हैं उसके। वेदक दूसरे में नहीं जा ही नहीं सकता वेदक, हाँ क्योंकि समय प्रकृति का उदय है उसका। और यहाँ क्या बात है, पूरे सभी उपशमित पड़ी है तभी अनंत अनुबंधी अकेला उसका उदय हो गया। अनादि अनंत सादी शांत, अनादि शांत और सादी शांत, उनमें से जो सादी शांत अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति है, विभक्ति के लिए सादी लगाया यानी पहले नहीं थी और अब हो गई, तो कब कहलाएंगे? पहले विषय योजना करके मिथ्यात्व में आया है, अब उसकी विभक्ति हो जाए, नया बंध किया तो विभक्ति वाला हो जाएगा। तो सादी शांत अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति है, आगे उसके निर्देश करते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, विभक्ति का जघन्य काल जो सादी शांत है, पहले में आया जो विषय योजना के बाद संयोजना की तो सादी हो गया, अब अंतर्मूर्त में वो तो सम्यक तो करके विषय योजना भी करेगा, ऐसा जीव लिया। तो अनंतानुबंधी चतुष्क विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाणे, ये कैसे होगा? मिथ्यात्व में जाने के बाद शादी हो गई उसकी, अनंतानुबंधी के शादी हो गई, अब वो मिथ्यात्व में ही रहा अर्धपुद्गल तक, और बीच में सम्यक तो प्राप्त भी किया फिर भी विषय योजना नहीं की, वो पॉसिबिलिटी है ना उसके। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों के अनंत काल नहीं है, भव्य जीवों में इन प्रकृतियों का अनंत काल नहीं है, जो अनादि अनंत वाला जो है विकल्प वो उसमें नहीं होगा। अचक्षु दर्शन ओग के समान कौन से के मिथ्या तो 12 कषाय 9 कषाय की विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है, तो अनादि अनंत भी होता है, अचक्षु दर्शनों में भव्य भी है तो अनादि शांत भी होगा, इस तरह से जो अभी हमने पढ़ा है यही कथन उनके बारे में लागू होगा। विशेषार्थ इसी को फिर दोबारा 12 कषाय 9 9 कषाय और मिथ्यात्व का, इसमें अनंतानुबंधी को छोड़कर 12 की बात है। अनादि अनंत काल अभव्यों के होता है और भव्यों के अनादि शांत काल होता है। सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों प्रकृतियां नियम से सादी शांत हैं, क्योंकि सम्यक तो होने पर ही उत्पन्न होती है और जिसको सम्यक तो हुआ है वो तो नियम से मोक्ष जाने वाला ही है, तो ये सादी शांत कहलाएंगे। इसमें भी इन दोनों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियों का सत्व नहीं है, ऐसा जो उपशम सम्यक दृष्टि अति लघु अंतर्मूर्त काल तक उपशम सम्यक्त्व के साथ रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी वो वेदक हो गया, मिनिमम पॉसिबल काल हमको लेना है। अनंतर यानी उसके पश्चात वेदक सम्यक दृष्टि होकर जिसने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, अब वेदक सम्यक दृष्टि हुआ वहां वो बीच में सभी प्रोसेसेस आएंगे, अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी, फिर वो नहीं नहीं, इस क्षय की बात चल रही ना, उसमें क्षय करके ये सबको, सबका नाश करने वाला है, क्या कहते हैं? अकेले क्षय होने की बात नहीं है, क्षय होगा तो किसका नाश करेगा? केवल सात की बात चल रही है, इसका यहाँ क्या चल रहे हैं? बारह कषाय, नौ नौ कषाय और मिथ्यात्व, सभी की बात चल रही है, यानी पूरा, पूरे की पूरा जो, क्योंकि यहाँ विकल्प क्या चल रहे, अनादि अनंत, अनादि शांत। अब इन प्रकृतियों का पूरा क्षय कौन करेगा? बारहवा गुणस्थान भी उसको प्राप्त होना चाहिए ना, बारह के बारह कषाय भी लेने हैं उसमें और नौ नौ कषाय भी लेने हैं। सॉरी, ये कहाँ चल रही, सम्यक प्रकृति की बात चल रही, बारह कषाय की हो चुकी, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है, तो ये क्षायिक होते ही इनका नाश हो गया, हाँ इसलिए अंत हो गया। तो उसका सत्वकाल अंतर्मूर्त देखा जाता है, अंतर्मूर्त में वो मिथ्या दृष्टि था, हाँ वो प्रकृति बनी और उपशम में से फिर वो क्षायिक हो गया। शादी में लिया ना उसको, तथा उत्कृष्ट काल, अभी जो हमने तीन बार असंख्यात से भाजित वगैरह देखा था, इन्हें पल्ले के असंख्यात भाग तीन बार लेना है। उत्कृष्ट काल पल्लोपम के तीन असंख्यातवे भागों से अधिक 132 सागर है, जो इस प्रकार है। कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके मुनि की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो गया, ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता अधिक से अधिक कब तक रहती है एक जीव को, उसकी बात चल रही है। तो पहले में पहले उसकी आदि कब हो गई, प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते ही उसकी सत्ता शुरू हो गई, विभक्ति वाला हो गया, और इसके बाद वह पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी 28 की सत्ता होकर मिथ्यात्व में चला गया। वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना में सबसे अधिक काल पल्लोपम का असंख्यातवा भाग लगता है, दोनों की उद्वेलना होने के लिए। वो भले वो स्थिति कितनी है उन दोनों की, नहीं नहीं स्थिति कितनी है मैंने पूछा, मिथ्यात्व में जब गया था यह जीव तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता में कितनी स्थिति बाकी थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर पूरा उद्वेलित करने के लिए उसको काल कितना लगता है, पल्ले के असंख्यातवा भाग, तो ये मैक्सिमम जो काल लगता है। पर ये दोनों को मिलकर काल बता रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा था उसी की बात कर रहे हैं ना। पहले समय वो तो वो बीच बीच में ले लेंगे, अभी ये पहले मिथ्यात्व में गिनेंगे, फिर बीच में वेदक सम्यक्त्व का काल गिनेंगे, वो अभी आने वाली बात है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता वाला जीव है, मिथ्यात्व में जाने के बाद भी उसकी सत्ता है और वेदक सम्यक्त्व होगा तो भी सत्ता है। अब यह क्या कह रहे हैं, उद्वेलना में सबसे अधिक काल कितना लगता है, पल्ले के असंख्यात्व भाग, पर अपने अपने उद्वेलना काल में जब अंतर्मूर्त शेष रहा, यानी उद्वेलना पूरी नहीं हुई, उद्वेलना पूरी करने के लिए अंतर्मूर्त बाकी रहा, तब उस जीव ने उपशम सम्यक्त की प्राप्ति का प्रारंभ किया। प्रारंभ किया उसके लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा ना, करण मांडेगा, कुछ करेगा। और जब उद्वेलना का उपांत्य समय प्राप्त हुआ, अभी उद्वेलना के अंतिम पॉइंट पर आया है, एक समय अधिक होता तो पूरी उद्वेलना हो जाती, उसी समय उसने क्या किया है, मिथ्यात्व का अभाव होकर उपशम सम्यक्त्व तो प्राप्त हो गया। वो उद्वेलना का भी अंतिम कांडक बहुत बड़ा होता है। अंतिम जो कांडक है ना, वो तो उसके पहले की बात है ये, क्योंकि हमने देखा था दोबारा उपशम सम्यक तो कब प्राप्त हो सकता है, तीनों की सत्ता होते हुए एक सागर जितनी उस स्थिति बाकी थी तभी, एक सागर के करीबन। तो वो अभी अंतिम समय में ये यदि वो सम्यक तो नहीं करता या उसका प्रयत्न नहीं होता तो पूरी उद्वेलना हो जाती, तो उपांत समय में क्या हुआ उसको, उपशम सम्यक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के कारण क्या हुआ, अब उसके मिथ्यात्व में से फिर दोबारा वो सारी प्रकृतियां तैयार हुई, तीन टुकड़े फिर हो गए। इस प्रकार सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की धारा न टूटकर वो सत्ता में थे तभी उसने फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करे और उसमें से ये टुकड़े हो गए, फिर इनका नवीन सत्व प्राप्त हो गए, सत्व यानी उनकी सत्ता फिर हो गई। अनंतर 66 सागर काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर, अभी उपशम में एक अंतर्मूर्त रहा, फिर क्षोपशम हुआ और 66 सागर तक रहा, अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। 66 सागर उसका उत्कृष्ट काल है, तब तक दोनों की सत्ता रहती है, अब वहां से मिथ्यात्व में गया और वहां उक्त दोनों प्रकृतियों के उद्वेलना काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग के अंतिम समय में, क्योंकि जब तक वेदक समय दृष्टि था तब तक तो उसकी वो अंत कोड़ा कोड़ी सत्ता थी वहां पर, मिथ्यात्व में गया अब उद्वेलना शुरू हो गई, फिर भी वो असंख्यात वर्षों तक रहते हैं सत्ता में, तो जब तक पूरी उद्वेलना होने के पहले पहले फिर उपशम समय तो प्राप्त किया। हाँ, एक समय पहले तो अंतिम समय में पुनः उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियों की धारा न टूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली। अब फिर दोबारा वो 66 सागर, अनंतर 66 सागर काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर वह जीव पल्योपम के असंख्यात भाग काल के द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना करके, अभी पूरा उद्वेलना किया और फिर उसका अभाव किया, क्योंकि उत्कृष्ट काल गिनना है ना, क्रम से उनका अभाव कर देता है। हाँ, 66 सागर काल तक और वहां भी कितना काल रुलेगा कोई उपशम समय तो उसने पहले बार किया, फिर वो तो यथायोग्य काल में नीचे आया, वहां ज्यादा नहीं भटका वो, क्योंकि वो 66 सागर और 66 दो बार 66 सागर ही उसका वेदक का काल घटित किया यहाँ पर। इस प्रकार ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है उसकी बात चल रही है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल पल्य के तीन असंख्यातवे भागों से अधिक 132 सागर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वेदक करेगा कि नहीं करेगा उसका क्या, वेदक तो करेगा ना, उसके बिना क्षायिक कैसे होगा, तो अभी मिथ्यात्व में जाएगा वो पूरा, यानी सादी अनादि जैसे हो गया, एक मिथ्यात्व की प्रकृति वाला हो जाएगा बाद में, फिर जब कभी प्रथम उपशम करेगा, फिर जब कभी वेदक करेगा वो करेगा, उसके ना नहीं, इन दो प्रकृतियों की अधिक से अधिक सत्ता कितने दूर तक हो सकती उसकी बात। अब अनंतानुबंधी चार का अनादि अनंत काल अभव्यों के होता है, ये तो आसान है समझ में, तथा जिस भव्य ने सम्यक्त्व प्राप्त करके सर्वप्रथम अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है उसके अनादि शांत काल होता है, क्योंकि अनादि के था वो की बराबर करना को जैसा दिख रहा है, यानी अनादि से अनंतानुबंधी थे, सम्यक तो प्राप्त किया तो भी अनंतानुबंधी है ही सत्ता में, जब विसंयोजना की हाँ तब उसका वो शांत हो गया, तथा विसंयोजना के बाद जिसके पुनः अनंतानुबंधी की सत्ता प्राप्त हो जाती है, या कैसे अपने आप होगी, क्या वो जो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा जैसे वेलना होती है, वैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे विसंयोजना किए ने क्या किया, अनंतानुबंधी वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कर दिया, तो क्या उल्टा अप्रत्याख्यान वो प्रत्याख्यान में से फिर अनंतानुबंधी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, मिथ्यात्व में जाएगा और नया अनंतानुबंधी का बंद करेगा। ये उल्टा संक्रमण वैसा उसमें नहीं होता है, ख्याल में है ना? पहले हम ऐसे समझते थे, ये विसंयोजना होती है फिर संयोजना होती है, पर कैसे होती है? तो मिथ्यात्व गए बिना संयोजना नहीं होती है। ऐसे ही चौथे में रहा और दोबारा वो अनंतानुबंधी रूप हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? अनंतानुबंधी योग्य परिणाम हुए तो डायरेक्ट मिथ्यात्व में ही चला गया ना वो, उसका चौथा गुण स्थान नहीं रहा। यानी उन प्रकृतियों में से नहीं बनते, नया बंद होता है उसको। देखो देखो यहां हम पढ़ेंगे, विसंयोजना के बाद जिसके पुनः अनंतानुबंधी की सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके अनंतानुबंधी का सादी शांत काल होता है। अब ये सादी शांत काल कम से कम कितना होगा और अधिक से अधिक कितना होगा उसको बताएंगे। इस सादी शांत काल का जघन्य प्रमाण अंतर्मूर्त, यानी इस अंतर्मूर्त में क्या होगा, अभी वो सादी हुई ना विभक्ति की, तो सादी हुई यानी वो फिर उसका उदय हो गया। एक दो समय में तो फिर मिथ्यात्व में से सम्यक तो नहीं होगा, अंतर्मूर्त तो मिथ्यात्व में रहेगा ही रहेगा, अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में रहकर वापस चला जाएगा, समय दृष्टि हो जाएगा। और फिर अंत कैसे होगा इसका अनंतन, फिर दोबारा विसंयोजना करेगा तब, तो यह अंतर्मूर्त में हो सकता है। तो जघन्य प्रमाण अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम अर्ध पुद्गल न हो गया, पुद्गल परिवर्तन। यानी अर्ध पुद्गल परिवर्तन में कुछ कम करना, अंतिम भाव किया सम्यक तो प्राप्त किया वो आगे का प्रोसेस। हाँ, तो ये इतने काल तक वो मिथ्यात्व में रहा या बीच में सम्यक तो भी प्राप्त किया होगा तो भी विसंयोजना नहीं की। इस तरह से अर्धपुद्गल परावर्तन काल घटित हो सकता। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले किसी जीव के उसकी पुनः सत्ता होने पर जो अंतर्मूर्त काल में सम्यक्त को प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर देता है उसके अनंतानुबंधी का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है। कि वह सम्यक्त प्राप्त किया ऐसा नहीं, विसंयोजना भी कर दी, यानी कितनी विशुद्धि हो गई उसकी। पहले सम्यक दृष्टि था, विसंयोजना की हुई और फिर परिणाम बिगड़ गए मिथ्यात्व, अंतर्मूर्त में वापस लौटा। और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जो जीव मिथ्यात्व में जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्व के साथ ही रहता है उसके अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्राप्त होता है। अचक्षु दर्शन का अभाव बारहवें गुणस्थान में होता है, उसके पहले वह सदा रहता है और उसका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनों के है, अतः इसके सभी प्रकृतियों का काल ओघ के समान बन जाता है। यानी जो सामान्य जो कथन है इनका सत्व किसके है किसके नहीं, तो अचक्षु दर्शन में भी ऐसे ये घटित कर सकते हैं इन प्रकृतियों के बारे में। भव्य मार्गणा भी चौदहवें गुणस्थान की प्राप्ति होने तक निरंतर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है पर अनंत नहीं, अतः इसके अनंत विकल्प को छोड़कर, यानी जो विकल्प अनंत वाला है क्योंकि ये मार्गणा ही अंत वाली है, तो कहते हैं उस विकल्प को छोड़कर काल संबंधी शेष सब प्ररूपणा ओग के समान बन जाती है। ओग के समान यानी अनादि अनंत वाला विकल्प को छोड़कर अन्य उसमें हो जाएगी, सभी प्रकृतियों के बारे में जो अभी हमने देखा था। अब ये तो सामान्य कथन हुआ अलग अलग प्रकृतियों का। अब आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मिथ्यात्व कौमा लगाओ बारह कषाय और नौ नौ कषाय विभक्ति का कितना काल है, तो इनका काल कितना है, तो जघन्य, क्योंकि वो मार्गणा ही सादी शांत है, तो उसका जो नरक गति का काल है उसको वहां बताना पड़ेगा। मिनिमम कितना है, 10,000 वर्ष। हाँ, जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, हर एक नरक की अलग अलग। हाँ, ये सामान्य कथन किया जघन्य और उत्कृष्ट। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भी काल समझना चाहिए, यानी उसके विभक्ति का काल कितना है, जितने वो नरक गति में जितने दिन रहेगा उतना। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काल एक समय है, किसका, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व, इनका जघन्य काल एक समय हो सकता है, अनंतानुबंधी का भी जघन्य काल एक समय हो सकता है। पहली पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए। हाँ बोलो, आप एक समय कैसा घटित है, देखो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व एक समय घटित करना है। मृत्यु हुआ तो क्या हुआ, जिसकी उद्वेलना में एक समय है वो नरक में जन्मा, ऐसा लेना, और एक समय में उद्वेलना पूरी हुई तो नरक गति के साथ एक समय हो गया उसका, है ना। नहीं समझे, हाँ वो दोनों का अलग अलग समझो ना। हाँ, अपने अपना 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 एक समय। हाँ वो उसकी होने दो ना, जिसको कोई अन्य जीव लेना। उद्वेल न करने वाला, वो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व में वो जन्मा नरक में, परंतु पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में वो उद्वेलना करते गया था, अभी उद्वेलना का उसका एक समय बाकी था और नरक में जन्मा वो, ऐसा। हाँ ऐसा लेके समय हाँ ऐसा लेना, अभी हम विशेषात में पढ़ेंगे बाद में इसको। देखो ये हम अभी छठी लाइन में, इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 22 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल कहते समय प्रथमादि नरकों में जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। यानी ये जघन्य काल एक समय जो घटित किया वो सातों नरकों में कहीं भी हो सकता है, परंतु अन्य प्रकृतियों में जघन्य काल कितना है, तो जो वहां की जघन्य आयु है। उत्कृष्ट काल कितना है, जो उत्कृष्ट आयु है। किंतु छह प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय है, छह के अलग अलग समझना, वो छह के एक साथ मत सोचना। हाँ, तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकों में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी की हाँ अभी वो बताएंगे करूं। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में अनंतानुबंधी चतुष्का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। देखो आप एक समय जो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के लिए तो अन्यत्र उद्वेलना करके जन्मने वाला है, यहाँ आया, और अनंतानुबंधी के बारे में यहाँ वो विसंयोजना की और मर गया, तो सम्यक्त्व की अवस्था में कौन मर सकता है, मरने वाला, छठे तक के मर सकते हैं, छठे नरक तक के सम्यक्त्व अवस्था में मर सकते हैं, परंतु सातवें वाला तो सम्यक्त्व अवस्था में मरेगा ही नहीं। सातवें में तो होता ही नहीं है एक समय, अंतर्मूर्त घटित किया कि विसंयोजना करके विसंयोजना किया, परंतु वो तो मिथ्यात्व में जाएगा, वह अंतर्मूर्त रुकेगा, वो इस तरह से अविभक्ति वाले का जब कार्य घटित करना है। विशेषात पढ़ेंगे ना, आपको क्लैरिटी होगी ज्यादा। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अनंतानुबंधी का पुनः संयोजन होने पर अंतर्मूर्त काल हुए बिना दूसरे समय में ही मरण नहीं होता। जैसे छठे नरक तक क्या है, समय दर्शन समय दृष्टि है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया और दूसरे समय में मरण भी हो सकता है, वहां हो सकता है, तो एक वहां तो घटित होता है, परंतु सातवें नरक में विसंयोजना भी की फिर भी वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मूर्त बिताएगा, फिर आयु का बंध करेगा, फिर अंतर्मूर्त बिताएगा और फिर मरेगा। विशेषण, सामान्य से नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। ये तो सामान्य कथन पहले से ही सातवें नरक के मिलकर कथन है। और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी, इन चार को छोड़कर, इन चार अनंतानुबंधी चार इनको छोड़कर शेष 22 प्रकृतियों का किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता। इसके बारे में बात चल रही है। आप कहेंगे शायिक समय दृष्टियों को नहीं होता है क्या मिथ्यात्व का भी, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। हाँ, अतः इन 22 प्रकृतियों का जघन्य काल, इन 22 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल की बात चल रही है। जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33 सागर का है। तथा विशेष की अपेक्षा जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा, शेष उपर्युक्त 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल तो पूर्वोक्त ही, उत्कृष्ट कितना है इनका 6 का, तो अपनी अपनी वहां की उत्कृष्ट आयु जितनी है उतना है, परंतु जघन्य काल में कुछ विशेषता है। अन्य प्रकृतियों का जघन्य काल जितनी जघन्य स्थिति है, जैसे नरकों में अप्रत्याख्यान आवरण का जघन्य काल कितना है, जितनी पूरे, क्योंकि वो सब उसके क्षय किसी के होता ही नहीं है, तो जितनी नरकायु है वहां की उतना उसका काल गिनेंगे हम, परंतु ये जो अभी 6 प्रकृतियां देखी हमने उसमें जघन्य काल उत्कृष्ट काल की बात है। उत्कृष्ट काल तो सेम है, अपने अपने उत्कृष्ट आयु, जघन्य काल में जो विशेषता है वो यहां बता रहे हैं, जो निम्न प्रकार है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करने वाले किसी जीव के उद्वेलना काल में एक समय शेष रहते हुए, ये नरकों में आने के बाद की बात नहीं है, पहले ही मिथ्यात्व अवस्था में वो उद्वेलना कर रहा है, एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरक में उत्पन्न होने पर, प्रथमादि यानी किसी भी नरक में उत्पन्न हुआ पहले से सातवें तक के, उक्त दोनों प्रकृतियों का सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से जघन्य काल एक समय बन जाता है। एक समय उसके बाकी थी उद्वेलना में, तो एक समय उसका, एक समय में उद्वेलना पूरी हो जाने वाली है। तथा ये दोनों की बात अलग बताई, अनंतानुबंधी का कैसा घटित हो सकता है एक समय, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजन करने वाला कोई एक समय दृष्टि नारकी, अभी यहां नारकी को लिया, पहले अन्य भव से मनुष्य या तिर्यंच जो है, जो उद्वेलना कर रहा था और नरक में जन्म लिया है, ऐसा जीव लिया, अब यहां कौन सा अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन करेगा, नारकी सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्व को प्राप्त होकर ये शादी हो गई ना उसकी, और वहां एक समय तक अनंतानुबंधी के साथ रहकर दूसरे समय में मरकर यदि अन्य गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके नरक गति की अपेक्षा अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय बन जाता है। परंतु सातवें नरक में ऐसा जीव अंतर्मूर्त काल हुए बिना मरता नहीं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व में आया है तो सातवें नरक का नारकी नियम से मिथ्यात्व में ही मरता है, मिथ्यात्व में ही आयु का बंध करता है, तो मिथ्यात्व में जाएगा, बाद में अंतर्मूर्त के बाद आयु बंध करेगा, आयु बंध करते ही मरेगा नहीं, फिर अंतर्मूर्त बिताएगा, फिर मरने। इसलिए कहते हैं अतः वहाँ अनंत आनुबंधी का जगन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। ये बात ख्याल में आई? सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति के लिए अन्यत्र उद्वेलना करके यहाँ जन्मा है, और अनंत आनुबंधी के लिए मरने की जस्ट पहले उसने की है। छह नरक तक तो सम्यक्त्व के साथ मर सकता है, और सातवें में तो मिथ्यात्व में ही मरता है, इसलिए वो जघन्य काल में जो विशेषता है वो बता दिया। ये नारकी की बात हो गई। अब तिर्यंश गति का कथन करते समय तिर्यंशों में 22 प्रकृतियों की विभक्ति का काल कितना है, यानी 22 प्रकृति तो हमेशा रहेगी उसके, तो कहते उसका काल कितना है। ये 22 और 6 की बात की है, इन दोनों की बात चले। तो कहते जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाणे, वहां जैसे हमने 10,000 वर्ष नारकी में देखे थे, तो तिर्यंशों में छोटा भव कौन सा है? खुद्दा भव ग्रहण। और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय है, तथा पूर्वोक्त 22 और अनंतानुबंधी चतुष्क इन दोनों का उत्कृष्ट अनंत काल है। तो कितना है तिर्यंश गति में अनंत काल? सादी और शांत चाहिए। हाँ, तो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है, जैसे हमने वहां देखा था नारकी में, अन्यत्र उद्वेलना करते करते वह एक समय बाकी रहा और यहां जन्म लिया उसने। और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 3 पल्लोकों में है। किसकी बात चल रही है? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यानी पहले उसने सम्यक दृष्टि था, अब तिर्यंश में जन्म लिया, मिथ्यात्व हुआ, और फिर इतना समय उसने बिताया, इस तरह से उसका यहाँ काल लेना है। जो हमने तिर्यंश का उत्कृष्ट काल गिनते हैं ना, उसको यहाँ लेना है। पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिमतियों में 22 प्रकृतियों का काल कितना है, जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण और अंतर्मूर्त प्रमाण है। जब पंचेंद्रिय तिर्यंश कहते हैं तो खुद्दा भव ग्रहण, और पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे या योनिमति कहेंगे, वो तो पर्याप्त ही होते हैं, तो इसलिए वहां के जघन्य काल है अंतर्मूर्त। तथा सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय है, और सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पल्लोकों में, वहां की जो उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी थी ना, लगातार तिर्यंशों में पंचेंद्रियों में घूमता रहे तो कैसा उसके पृथक्त्व कोटि पूर्व प्लस 3 पल्ल, वो वहां पर घटित किया उन्होंने। अधिक से अधिक काल तिर्यंशों का अधिक काल हमने तो उसमें तो 95 देखे, संगी असंगी दोनों ले। हाँ, जिस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंश आदि के मुनि के 28 प्रकृतियों का काल बतलाया है, उसी प्रकार मनुष्यत्रिक अर्थात सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनि के भी उक्त 28 प्रकृतियों का काल समझना चाहिए। विशेषण तिर्यंशों के 5 भेद है, याद है ना? कौन से? सामान्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश पहले लेंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंश, पर्याप्त, योनिमति तिर्यंश और लब्धि अपर्याप्त। तिर्यंशों के 5 भेद है, उनमें से लब्धि अपर्याप्त तिर्यंशों को छोड़कर शेष 4 प्रकार के तिर्यंशों की अपेक्षा यहाँ पर 28 प्रकृतियों का सत्व काल कहा है। सामान्य से तिर्यंश गति में रहने का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग के जितने समय हो उतने पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते हैं, तो कौन से वाला असंख्यात? अभी देवलाली में किसी ने मेरे को प्रश्न चिट्ठी भेजी थी, जब आप असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहते तो कितने असंख्यात समझना, उसका प्रमाण क्या है? हाँ, तो ये अवली की असंख्यात और भाग वाला असंख्यात, वहां मैंने उत्तर भी दिया था इसका। या क्या लिखा, आवली के असंख्यात पे भाग के जितने समय हो उतने पुद्गल परिवर्तन, एक परिवर्तन, दो परिवर्तन, तीन परिवर्तन, ऐसे कितने, तो आवली में जघन्युक्ता संख्यात समय होते हैं, उसका असंख्यात वा भाग करेंगे तो कोई ना कोई परिता संख्यात वाला भेद होगा, अभी बीच वाला कोई, तो इतनी बार पुद्गल परिवर्तन करेंगे इतना काल वो वहां घूमेगा तिर्यंचों में। इसलिए जिन प्रकृतियों का तिर्यंच गति में कभी भी अभाव नहीं होता, ऐसी 22 प्रकृतियों का तिर्यंच गति सामान्य की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रम से खुद्दा भोग्रहण प्रमाण और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। ये बात ख्याल में आई? नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन तो एक पुद्गल परिवर्तन का आधा काल है, और एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे असंख्यात बार पुद्गल परिवर्तन हो जाए इतनी वो तिर्यंच गति का अधिक से अधिक काल, वो सादी शांत काल बता रहे, अनादि से जो तिर्यंच है उसकी बात नहीं है, अन्य गति से तिर्यंच में आए हुए अधिक से अधिक कितना काल बिताएंगे, ये तो एक इंद्रियों की अपेक्षा ये इतना काल हो जाता है, परंतु सभी तिर्यंचों में भी इतना ही काल होता है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चार का उत्कृष्ट सत्व काल भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हो जाता है। ये सत्व काल विभक्ति का काल बता रहे, जो तिर्यंच गति का उत्कृष्ट काल है वही इनके सत्व का उत्कृष्ट काल होगा, उसमें तो कोई बात ये नहीं, कोई पंचेंद्रिय में इतना काल कहाँ बिताएगा, पंचेंद्रियों में तिर्यंचों की बात चल रही है। देखो, पंचेंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, पंचेंद्रियों का काल कितना है ज्यादा, हाँ 2000 तो त्रस की है, हाँ पंचेंद्रियों में सादिक 1000, सादिक 1000 साल। यहाँ क्या कहते, देखो नीचे से चौथी लाइन, इसी प्रकार अनंतानुबंधी चार का उत्कृष्ट सत्व काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हो जाता है, क्योंकि इतने काल तक जीव तिर्यंच गति में मिथ्यात्व के साथ रह सकता है, और मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता। अनंतानुबंधी के साथ रहना है ना मिथ्यात्व में इतने काल बिताना, परंतु अनंतानुबंधी के जघन्य सत्व काल, ये जघन्य सत्व काल की बात करें, और सम्यक प्रकृति तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के जघन्य और उत्कृष्ट सत्व काल में विशेषता है। ये उत्कृष्ट काल सत्ता की अपेक्षा वो तो समझे, परंतु यहाँ जघन्य काल में जो वेरिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। जघन्य काल कब कहेंगे, सत्ता उसमें आया तो सत्ता हो गई, और फिर उसका सत्ता में से नाश कर दिया, उसने भी संयोजन किया, उद्वेलना की, जो कुछ है, तो कहते हैं वो इस प्रकार है, उक्त छहों प्रकृतियों का जघन्य सत्व काल एक समय जिस प्रकार नरक गति में घटित कर आए हैं, नरक गति में कैसे घटित किया, अन्य गति में उद्वेलना की, एक समय बाकी है तब उसमें जन्मा, वैसे अन्यत्र उद्वेलना करके एक समय बाकी है तब ये तिर्यंच में जन्मा, उसी प्रकार प्रकर हुआ, उसी प्रकार यहाँ तिर्यंच गति में भी घटित यह हुआ कर लेना चाहिए, वहां भी सम्यक हुआ, विसंयोजना कर दी और एक समय में मरकर अन्यत्र गया, ऐसे तिर्यंचों में भी लेना, वो पंचेंद्रियों में लास्ट बहु पंचेंद्रियों में घटित करना, तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट सत्व काल, साधिक तीन पल्य है, क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाला जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच दान या दान की अनुमोदना के महात्म्य से उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होकर, यानी कौन सा तिर्यंच लिया, पहले सम्य दृष्टि था तभी तो सत्ता वाला हो गया ना, बाद में मिथ्या तो में भी आया तो फिर क्या हुआ उसका, दान के अनुमोदना में उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुआ और वहां पर उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना होने के पहले ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। क्या हुआ? वो मिथ्यात्व अवस्था में भोग भूमि में जन्मा, सत्ता में तो थे उसके, और वहां उत्पन्न होने के बाद उद्वेलना हो, उद्वेलना कितने काल में होती है? पल्ले के असंख्या थे भाग, परंतु उसके पहले पहले सम्यक दृष्टि हो गया। फिर उसके साधिक तीन पल्ले काल तक उक्त दोनों प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, क्योंकि पहले भी मिथ्यात्व अवस्था में सत्व तो था, उद्वेलना कर रहा था, उद्वेलना पूरी होने के पहले पहले फिर समय दृष्टि हुआ, तो फिर उसका सत्व चला रहा। हमने देखा था ना, वो तो कितने तो शास्त्र सागर तक तो रहता है, रह सकता है, परंतु इसका काल यहाँ तीन पल्ले का है, बाद में तो ये नियम से देव में जाने वाला है। तो जब तक यहाँ है, पहले भी उसकी सत्ता थी, उसकी सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है, और वहां दान के फल में वहां उत्पन्न हुआ है। यहाँ साधिक से, साधिक तीन पल्ले का है ना, वहां पर साधिक से पूर्व कोटि पृथक्त्व लेना चाहिए। विशेष की अपेक्षा पंचेंद्रिय, ये तो सामान्य तिर्यंचों में बात बता दी, विशेष यानी उसके जो भेद करके बताएंगे, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच का जघन्य काल, खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले है, ये हमने विस्तार से देखा भी था। पंचेंद्रिय तिरिंच इतना ही कहा है, उसमें संगी भी है, असंगी भी है, पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, तथा पंचेंद्रिय पर्याप्त तिरिंच और योनिमति तिरिंच का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तों में जघन्य आयु होगी तो अंतर्मूर्त तो होगी ही, और उत्कृष्ट काल क्रम से यानी पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए 47 पूर्व कोटि अधिक और योनिमति के लिए 15 पूर्व कोटि से अधिक तीन पल्ल है। अतः जिन प्रकृतियों का तिर्यंच गति में कभी भी अभाव नहीं होता, उन 22 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है उतना कहा है। इन 22 प्रकृतियों का अभाव तिर्यंच गति में नहीं होता है तो उनका जघन्य काल कितना? तो जो पर्याप्तों में अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट काल कितना? तो लगातार वो पर्याप्त वो जितने हो सकते हैं उतना, बाद में अन्य गति में जाएगा वो जीव। तथा सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार का उत्कृष्ट काल जहां जितना उत्कृष्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काल तक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि पर्यायों के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान में रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है। अतः अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन प्रकार के तिर्यंचों में से जिसका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बन जाता है। तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना होने के पूर्व ही सम्यक उत्पन्न करके उनकी सत्व स्थिति बढ़ाकर, क्या कहना चाहते हैं? ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मान लेते हैं, वो तो ये तीन पल्ले और इतने साधिक पूर्व कोटि बताए, तो बीच में तो इतने उद्वेलना का काल है ही नहीं है, तो बीच बीच में समय दृष्टि भी होगा और फिर उसके उसकी स्थिति फिर नई शुरू हो जाएगी। उद्वेलना पूर्ण होने के पहले पहले बीच में सम्यक दृष्टि भी होगा, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो कहीं वेदक समय के साथ रहकर जिस तिर्यंच का जितना उत्कृष्ट काल कहा है, यानी वो सम्यक तो छूट भी जाएगा, क्योंकि सम्यक तो के साथ ही आयु बंद करेगा तो देव में चला जाएगा, इसलिए बीच बीच में वेदक सम्यक दृष्टि भी होगा, फिर उसकी नई वो प्रकृतियां भी तैयार हो जाएगी और फिर बीच में मिथ्यात्व में भी चला जाएगा। जिस तिर्यंच का जितना उत्कृष्ट काल कहा है उतने काल तक इन दोनों प्रकृतियों की धारा न टूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। कल पढ़ना है क्या? कंप्लीट करेंगे यहाँ। तथा पूर्वोक्त तीन प्रकार के तिर्यंचों के इन छह प्रकृतियों का जघन्य सत्व काल एक समय है, जैसे हमने नरक में देखा था, जिसका उल्लेख नरक गति में इनका जघन्य काल कहते समय कर आए हैं, उसी प्रकार यहाँ समझ लेना चाहिए। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी के 28 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि के समान है। इसका यह अभिप्राय है कि पूर्व कोटि पृथक्त्व की गणना को छोड़कर शेष काल निर्देश दोनों का समान है, यानी पृथक्त्व कोटि पूर्व उसके लिए 95 था, इसके लिए यथा योग्य समझना। परंतु पूर्व कोटि पृथक्त्व से सामान्य मनुष्यों के 47, पर्याप्त मनुष्यों के 23 और मनुष्यनियों के 7 पूर्व कोटि लेना चाहिए, और उसके बाद वो तीन पल्ले बता दे, बढ़ा देना उसके अधिक से अधिक स्थिति। अब यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।